ये SBS उर्दू है।
फैसल, बैंकिंग रॉयल कमीशन ने जुमे को अपनी रिपोर्ट हुकूमत के हवाले कर दी। कमीशन ने फाइनेंशियल सेक्टर के मसाइल और बेकायदगियों से निपटने के लिए कई तजावीज भी दी हैं। फैसल इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। फैसल, बताइएगा कि बैंकिंग रॉयल कमीशन की इस रिपोर्ट और सिफारिशात में लूजर और विनर्स कौन है?
रेहान, सबसे पहले आपके उर्दू सामीन को मेरा आदाब। देखिए, ये जो हेन्स की जो रिपोर्ट है, ये तो बहुत बड़ी एक रिपोर्ट है और उन्होंने 76 रिकमेंडेशंस दी हैं। तो मैं बुलेट पॉइंट्स में पहले इसको डिस्कस कर देता हूँ कि कुछ विनर्स हैं और कुछ लूजर्स हैं। अच्छा, हम लोग जो हैं वो बैंक्स को स्टिल क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये विनर्स हैं, डिस्पाइट दैट कि उनके एक जो अभी हम डिस्कस करें कि उन पे कुछ फाइन्स आए हैं, मगर उसके बावजूद जो है वो रॉयल कमीशन ने कोई जो कि बैंक्स कैसे सूटेबिलिटी करते हैं बोरोअर्स की या कोई हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स के मेजर्स हैं, उस पर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लेके आया। अच्छा, दूसरा जो बड़ा विनर है वो है एसिक, कि उनका जो ट्विन पीक मॉडल ऑफ रेगुलेशन है जो कॉर्पोरेट रेगुलेट करता है और जो एक्सपेंडेड पावर्स उनको दी गई थी इंक्लूडिंग सुपर इनोवेशन, उस पर भी कोई चेंज नहीं की गई है। और तीसरा बड़ा विनर जो है ना, वो गवर्नमेंट ने एक फंड स्टैब्लिश करना है, एक स्कीम है, कॉम्पनसेशन स्कीम, जो 6 साल के बजाय 10 साल तक पीछे जाएगी और $30 million जो है ना वो उसमें जो भी मिसकंडक्ट हुआ है तो वो उसमें फंड दिया जाएगा, ताकि अगर किसी के 6 से 10 साल यानी 6 के बजाय 10 साल तक अगर वो चाहे तो वो ये क्लेम कर सकता है अगर उसके साथ कोई ऐसा मिसकंडक्ट हुआ है।
यानी इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत अपने सुनने वाले को कर दूं कि यानी अगर पिछले 10 सालों में किसी भी बैंक या मालियाती इदारे की तरफ से किसी के साथ कोई ऐसी नाइंसाफी हुई है या कोई ऐसे चार्जेस लिए गए जिसकी सर्विस नहीं फराहम की गई, तो हुकूमत ने एक फंड कायम किया है कि उससे उसको कंपनसेशन दिया जा सके,
और उसमें $30 million का जो है वो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले ये लिमिट 6 साल थी, अब उसको बढ़ा के 10 साल कर दी गई है, यानी पीछे।
ठीक।
अच्छा, लूजर में अगर आप देखिए तो तीन मेजर वो हैं। लूजर में देखिए, एक तो जारी बात है कि जो हमारे बिग बैंक्स हैं, AMP, ANZ, CBA, NAB और वेस्ट बैंक, ये जो इन्होंने इनका स्कैंडल था नॉर्थ सर्विस का, जो जिसमें उनके कई मिसकंडक्ट आए जो खबरों में भी रहे, उसमें तकरीबन $850 million का इन्हें जो है ना वो फाइन देना है मिला के। अच्छा, इसी तरह रिपोर्ट में ना तीन अननेम कंपनीज का जिक्र किया गया है जिसके एग्जीक्यूटिव जो है ना वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पे जाएंगे। अच्छा, इसमें मोस्ट लाइकली एक बैंक भी हो सकता है, मैं भी उसको आगे वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये उसमें वो इसके एक लूजर में से है। उसके बाद जो सबसे बड़ा लूजर आ रहा है जो वो मोर्टगेज ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, जिसमें जो रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक कि अब मोर्टगेज ब्रोकर्स जो है उनके कमीशंस को बैन कर दिया जाए और वो फी फॉर सर्विस करें, यानी अपफ्रंट पेमेंट लें अपने कस्टमर से मोर्टगेज के लोन्स की राइटिंग के लिए।
जी, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमारे सुनने वालों में बहुत दिलचस्पी पाई जाती है, जो लोग इस वक्त मकानात की कीमतें कम हैं और लोग शायद घरों की तलाश में निकल रहे हैं और वो कर्जा लेने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ जो मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं यानी मेन बैंक जो कर्जा देते हैं उनके अलावा जो मॉर्गेज ब्रोकर्स होते हैं जिनके पास पूल ऑफ बैंक्स और मालियाती इदारों का डेटा होता है जहाँ से वो कर्जों के लिए अपने ग्राहकों को अपने सार्फिन को रुजू करवाते हैं, तो उनको अभी फिलहाल जो कमीशन मिलता है वो उन बैंकों से मिलता है जिनके लिए वो जिनकी तरफ से वो कर्जे दिलवाने के काबिल हो जाते हैं।
जी रेहान, असल में ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात है क्योंकि इस वक्त इस जो रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन है, इससे तो बैंकों का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बेसिकली वो अपने प्रॉफिट को शेयर करते थे, और अनफॉर्चुनेटली जो कस्टमर्स और सार्फीन है उन पे एक बर्डन आ रहा है कि वो पहले $2,000-$5,000 दे के वो एक अच्छे लोन की तरफ जाना होगा, क्योंकि बार बार ये होता है कि हमारे एक डिफरेंट कैटेगरीज होती है, एक बैंक के पास एक कस्टमर जाता है तो वो उसका एक सर्विसबिलिटी का स्टैंडर्ड होता है, वो कहता है कि आपको इतने पैसे मिल सकते हैं इतने नहीं मिल सकते, ये प्रोडक्ट है। जब आप मोर्गेज ब्रोकर्स के पास जाते हैं तो उनके पास नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट होती है, तो समहाउ वो उसके उसके डिजायर ऑब्जेक्टिव को मैनेज कर देते हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक 76% लोग आउट ऑफ 95% लोग मोर्गेज ब्रोकर्स को इस्तेमाल करते हैं, 76% ने कहा कि वो जो है वो मोर्गेज ब्रोकर्स के पास जाना चाहते हैं और उनके अपफ्रंट पेमेंट से खुश हैं। मगर उसके बावजूद रॉयल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें ये रिकमेंडेशन मौजूद है।
कुछ जिक्र कीजिएगा कि रॉयल कमीशन ने जिन लोगों पे, जिन इदारों पे खास तौर पे उंगली उठाई है उसमें एजिक और एप्रा ऐसे हुकूमती इदारे हैं जो मालियाती इदारों और बैंकों के नज़्म व ज़ब्त पर नज़र रखते हैं, लेकिन उनकी जानिब से पिछले कई सालों में कोई प्रोसिक्यूशन देखने में नहीं आया, किसी के लिए कोई सज़ाएँ कभी तजवीज़ नहीं हुई, जबकि रॉयल कमीशन के सामने ऐसी ऐसी स्टोरीज मंजर आम पे आई जिसमें ऐसे लोग जो इंतकाल तक कर चुके थे उनकी सर्विस फीसिस तक ली जा रही थी और जाहिर है उनको कोई खदमात फराहम नहीं की जा रही थी। तो क्या एजिक और एप्रा के ऊपर भी कुछ सख्त दबाव होगा कि वो अब इन बैंकों और मालियाती इदारों पर नज़र रखें?
अच्छा, एस सच तो एसिक पे तो इतना नहीं आया है, लेकिन एप्रा के लिए उन्होंने कहा है कि फेसेस अ केपेबल रिव्यू एवरी 4 इयर्स जो है। अच्छा, इसको जो फर्स्ट लेट करेंगे वो ग्राम सैमुअल है जिसको लेट किया जाएगा। तो उन्होंने एप्रा को थोड़ा सा टाइट किया है क्योंकि ज़ाहिर है एप्रा जो है ना वो लार्जर इंस्टीट्यूशन को लुक आफ्टर करता है और इवेंचुअली मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा एसिक की तरफ आएंगे, मगर एसिक को इस वक्त जो है वो बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है, यानी ऐसे कि किसी भी चीज को नहीं छेड़ा गया।
सार्फीन के मफादात के तहफ्फुज़ करने वाले कुछ ग्रुप्स ने यह एतराज़ भी किया है कि इसमें बैंकों पर ना कोई सजा लागू की गई है अभी फिलहाल और ना कोई बात ऐसी की गई है, तो ऐसा लगता है कि शेयर होल्डर्स पे छोड़ दिया गया है कि वो बैंकों के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में डिसीजन लें कि वाकई उनके लिए इतनी भारी तनख्वाहें ज़रूरी हैं या नहीं। और शेयर होल्डर्स तो जाहिर है वो बैंकों का अपने शेयर्स का मफाद देखेंगे कि कब किस तरह उनके शेयर्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो ख़ास तौर पर ये इस रिपोर्ट में नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक का जिक्र क्यों किया गया, उसके ऊपर काफ़ी इनका गुस्से के अल्फाज इस्तेमाल हुए।
रेहान, अभी भी आपने भी अपनी खबरों में भी शायद इसका जिक्र किया है कि एनबी जो है वो पिछले 12 महीनों से रॉयल कमीशन की बहुत रडार में रहा है और उनकी मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें मुसलसल जो मिसकंडक्ट होती हैं चीज़ों, यानी वो एलिमेंट्स मिलते आ रहे हैं। तो इस वक्त वो एनबी की मैनेजमेंट से वो खुश नहीं है और मुझे लग रहा है कि शायद उसमें से कोई प्रोसिक्यूशन हो या ना हो ये तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मे बी उस तरफ शायद कोई एलिमेंट हो। मगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बैंक इस बार बिल्कुल विनर है, किसी किस्म का प्रोसिक्यूशन नहीं किया गया, किसी किस्म का उन पे कोई फाइन ऐसा अदर देन इन पैसों के अलावा नहीं किया गया। और मैं आपको मजाक बताऊं कि बैंकों ने ऑलरेडी अक्टूबर से अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं डिस्पाइट दैट के रेट्स बढ़े नहीं हैं इन फाइन्स को कॉस्ट करने के लिए। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि आम सार्फीन ही इसी फाइन्स को बर्दाश्त कर रहे हैं। और अभी भी ये हाइक है कि हालांकि जो फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट कल थी उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नजर नहीं आ रहा कि डिस्पाइट दैट कि वो ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि वेजेस ग्रोथ पे निगाह रखेंगे, उससे शायद जो है वो इंटरेस्ट रेट थोड़े से अप होने का चांस हो, जिसको फाइनेंशियल मार्केट अभी डिक्लाइन कर रही है और कह रही है कि 2019 में मे नॉट पॉसिबल। मगर उसके बावजूद जो है बैंक जो है वो मुसलसल ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि 10 से 20 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ा देंगे क्योंकि अपनी इंक्रीज ऑफ कॉस्ट। तो ये बुनियादी तौर पर फाइन जो है वो एक आम आदमी ही दे रहा है।
आखिरी सवाल मैं इस बारे में करूंगा कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स का एक सागा है और जिसके बारे में बहुत कुछ मीडिया में भी आता रहा है कि ये बैंक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हायर करते हैं जो पब्लिक में जाके अपने आप को इंडिपेंडेंट शो करते हैं और उसी बैंक की जाहिर जिन्होंने उनको हायर किया होता उनकी प्रोडक्ट्स को बढ़ा चढ़ा कर उनके सामने पेश करते हैं। तो इस बैंकिंग रॉयल कमीशन में ऐसे एडवाइजर्स के बारे में क्या तजवीज़ दी गई है?
इसमें देखिए बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे दें, एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग साइड पे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि उसमें अब जो कमीशन जो है वो 2 सालों में बैन हो जाएंगे, यानी कमीशन से। लेकिन ये जो मॉड्यूल है यूके में इम्प्लीमेंट किया गया था और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद क्वालिटी ऑफ द इंश्योरेंस जो है वो बहुत गिर गई और उन्हें 8 महीने या 10 महीने के बाद उसको रिवर्स करना पड़ा। अच्छा, कहने का मकसद इसलिए था कि आपका सवाल जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स का है, अगर वो मिसाल के तौर पे एएमपी के हैं, अकाउंट के हैं, क्योंकि बास तो वो एम्प्लॉय है एज ए फ्रेंचाइज, उनकी फ्रेंचाइज वो है, तो उस बारे में सिर्फ जो रॉयल कमीशन ने जो टाइटनेस की है वो उनकी क्वालिफिकेशन और रेगुलेशन है। यानी रेगुलेशन का मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट ऑफ एडवाइजर्स हैं वो प्रॉपरली यानी की जाए और उसकी एक अथॉरिटी हो, वो प्रूव्ड हुई हुई हो। बहुत सारी उसमें जो एलिमेंट्स हैं जो पहले कब बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देते थे वो ना हो। और बिल्कुल पार्शियलिटी जो है ना उसकी इजाजत नहीं दी गई है। पार्शियलिटी यानी कि आप जो है ना वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को करें, मगर जाहिरी बात है कि जो बैंक्स के रिलेटेड एडवाइजर्स होंगे अगर वो अपनी इंडिपेंडेंसी शो कर अगर वो मतलब ये शो करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है और वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में आ जाता है, इसके ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है।
और आखिरी बार इस बारे में पूछूंगा कि अब लोग मकानात खरीदने जब जाएंगे और कर्जे लेने की कोशिश करेंगे, तो क्या इस रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के बाद और मीडिया में जितनी हाइप क्रिएट हुई है, क्या अब बैंकिंग और मालियाती इदारे उनसे अब कुछ ज़्यादा सख्ती करेंगे, उनको देते वक्त काफ़ी जाँच पड़ताल में इजाफा हो जाएगा, डॉक्यूमेंट ज़्यादा मांगेंगे, क्या इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि लोग जो पहले लो डॉक्यूमेंट लोन ले थे वो अब शायद इतनी आसानी से हासिल ना कर सकें?
अच्छा देखिए, नंबर वन तो मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा इसमें मैं गुफ्तगू थोड़ी डिटेल्स में कर लूंगा कि पिछले 12 महीने में बैंकों ने अपने आप को काफी बेहतर किया। इसमें कोई शक नहीं कि जब से ये रॉयल कमीशन का शुरू हुआ है तो बैंकों ने अपने पेपर वर्क में अपनी जो सर्विसेबिलिटी थी या इजी क्रेडिट था उस पे काफी हद तक कंट्रोल किया है जो अपने लूपहोल्स थे। अच्छा, इस रॉयल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कोई एज सच उनकी सर्विसेबिलिटी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो क्योंकि उनकी उस पे कोई पाबंदी उनको नहीं लगाई गई है। मगर हमें बहुत सारे फैक्टर्स को सामने रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी मार्केट पिछले दिनों काफी बढ़ रही थी, अच्छा, और फिर पिछले कोई 6 महीने से प्रॉपर्टी मार्केट में डिक्लाइन आया है, तकरीबन ओवरऑल एक जनरली 20% मार्केट गिर चुकी है। अच्छा, जब तमाम ये एलिमेंट्स आते हैं और डिस्पाइट दैट कि हमें ये भी नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक पॉलिटिकल चेंज आ सकती है जब जो इलेक्शंस आ रहे हैं और उसमें जो दोनों मेजर पार्टीज हैं उनकी जो पॉलिसीज हैं उसमें काफी कॉन्ट्रोडिक्ट है, तो एक पार्टी की पॉलिसी जो है ना वो ये नहीं पॉसिबल है कि अगर वो इम्प्लीमेंट करती है तो प्रॉपर्टी मार्केट में फर्दर डिक्लाइन आए। तो इन तमाम जब फैक्टर्स को आप रखते हैं तो बैंक जो है ना वो अपना रिस्क एनालिसिस करता है, उस बुनियाद पे मुमकिन है कि बहुत सारे वो जो है वो स्ट्रिक्ट लेवल्स में आए अपनी सर्विसेबिलिटी में, मगर उनपे रॉयल कमीशन की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। ये सारे उस वक्त होता है कि वो अपना रिस्क एनालिसिस करते हैं कि हम इस वक्त इसको इतना लैंड करें या ना करें, हम उसको रिकवर कर पाएंगे, रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। ये इसका रॉयल कमीशन से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल सिनारियो जो है वो ये शो कर रहा है कि अब लोन्स में टाइटनेस आएगी जो है, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में ग्रोथ में डिक्लाइन नजर आ रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया फैसल शमसी हमारे सामाईन से इस अहम मौजू पर बातचीत करने का।
थैंक यू, शुक्रिया।
अभी आप फैसल शमसी से बातचीत सुन रहे थे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैंकिंग रॉयल कमीशन ने जुमे को जो अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सामने पेश की है उसके क्या असरात आम लोगों पर पड़ सकते हैं।
मजीद दिलचस्प मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए।